कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से श्री राधा माधव श्री राधा मदन मोहन मंदिर इस्कॉन उज्जैन की ओर से भगवान श्री जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के उपलक्ष्य में शास्त्री नगर के इस उद्यान में 7 दिवसीय भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अमृतवाणी भगवत गीता का सत्संग का आयोजन सायंकाल और सुबह को होता है। तो आज सुबह के सत्संग में आप सबका स्वागत है। भगवद गीता के मध्य वाले 6 अध्यायों का 7 से आरंभ किया है, जो भक्ति भगवान की भक्ति प्रेममयी सेवा जो भगवान का आदेश है उसमें 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी शरणागति अपने में मन आसक्त करना मैं आसक्त मना ये माम प्रपद्यन्ते जो मेरा शरण लेते हैं जरा मरण मोक्षाए जो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु बुढ़ापे दुख से व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं वो मेरे को पूर्ण रूप से जान लेते हैं। तो 8वें अध्याय में हमने कल आरंभ में सुना कि भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया। ब्रह्म शुद्ध जीवात्मा को कहते हैं, उनके स्वभाव भगवान की प्रेममयी सेवा को अध्यात्म कहते हैं, कर्म जिसके कारण फल भोगने के लिए शरीर लेना पड़ता है उसको कर्म की संज्ञा दी गई है। और अधिभूत ये भौतिक जगत है जो क्षण क्षण में बदल रहा है, और अधिदेव भगवान का विराट रूप है जिसमें ये सारा जगत समाया हुआ है। अधि यज्ञ स्वयं भगवान है और वो हम सबके हृदय में विराजमान है। अब मुख्य जो प्रश्न है कि अंत काल अंतिम समय भगवान की स्मृति कैसे आए जाए। जीवन भर के साधन की सफलता है अंत नारायण स्मृति ही। अंत समय भगवान की स्मृति कैसे आए, तो पहले तो भगवान ने इसका उत्तर दिया कि शरीर छोड़ते समय जिसका यम यम वापी स्मरण भावम अंते कलेवरम, ये तो सबके लिए है। लेकिन इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा अंत काले च माम एव सुमरण अनुसुमरण, अंत काल में जो मेरा अनुसुमरण करता है। अनुसुमरण का यह भी अर्थ निकलता है कि दूसरे भक्त चारों ओर बैठ के कीर्तन करें और उसको वो अनुसुमरण करे, उनको सुन के और उसका सुमरण आ जाए। अनु जब भी शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है उसके आगे कोई साधन, कोई और गुरुजन है, कोई और परंपरा है जिसने मार्ग बताया है, उसी मार्ग से साधन करना चाहिए तो फिर मेरे भाव को प्राप्त करता है और मेरे लोक में आता है। और फिर सामान्य लोगों के लिए कोई भी कहीं भी अंत समय में मैं मेरा स्मरण करता है तो फिर वापस मेरे अंत मति सो गति, उस वक्त जिसकी उसकी बुद्धि जिसके ऊपर केंद्रित होती है वही भाव को वो प्राप्त करता है। और फिर भगवान ने सबके लिए महावाक्य कहा, इसलिए हर समय मेरा अनुचित स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। और स्मरण किससे करो, बोला मन से करो और बुद्धि से करो, तो मन और बुद्धि मेरे को अर्पित कर दो तो मेरे पास आओगे। इसके बाद आठवें अध्याय में विशेष रूप से सातवें अध्याय का ध्यान योग और सारी छठे अध्याय का ध्यान योग और सातवें अध्याय के भक्ति योग का तुलना की गई है। तो योग के साधन से भक्ति को मिलाकर अंत समय कैसे प्राणों को भ्रमों के बीच में स्थित करके ओम का उच्चारण करने से, और भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करने से वो मेरे पास आएगा। ये असल में षट चक्र, ये जो हमारे शरीर में छह चक्र हैं वो गुदा से लेकर और सहस्र सर के ऊपर तक ये जो छह चक्र हैं, इन चक्रों में प्राण रहता है और प्राण के माध्यम से आत्मा को अंत समय मूर्धन्य सर के ऊपर के हिस्से से विसर्जन करना है तो वो योगी भगवत धाम को प्राप्त करने का, ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। लेकिन फिर भगवान ने कहा भक्ति में अनन्य भक्ति वालों के लिए तो मैं सुलभ हूं, इसका मतलब योग में बड़ा प्रयास करना पड़ता है लेकिन भक्ति से मैं बहुत सुलभ हूं, आसानी से मिल जाता हूं। और फिर भगवान ने तुलनात्मक बता दिया कि भौतिक जगत ब्रह्मा जी से जके जगत से लेकर इस धरती तक जो कुछ भी है इसमें आना जाना पड़ता है, और जो एक बार मेरे धाम में आता है तो उसको फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में इस दुखाले संसार, दुखमय संसार में और अशाश्वत संसार में नहीं आना पड़ता। और जिसको वेद ने संतों ने मेरा धाम कहा है वहां प्राप्त करने वाले वापस दुखी संसार में नहीं आते हैं। यहां तक की कथा रात हुई थी तो आज हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं, ये 22वां श्लोक है, पाठ कीजिए। पुरुषः सपरः पारथः। भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वं इदं जगततम्। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, पुरुषस्य परः पार्थ, हे पार्थ, पुरुषस्य, वो पुरुष जिसको पहले कहा है पुरुषम परमम दिव्यम, ये योगी की बात हो रही है। योगी जिस परम पुरुष दिव्य का चिंतन करता है वो पुरुष लभ्य, आसानी से मिल जाता है, चक्कर भेदन की भी जरूरत नहीं है, आसन प्राणायाम की भी जरूरत नहीं है, कठिन प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है, सुलभ मिल जाता है। लभ्य कैसे? भक्त्या अनन्या, अनन्य भक्ति से वो परम पुरुष हे पार्थ आसानी से मिल जाता है। ये तुलनात्मक है, उसमें तो बड़ा परिश्रम होता है लेकिन ये बड़ी आसानी से मिलता है। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? अनन्य के दो अर्थ होते हैं, एक न अन्य, और किसी की नहीं मेरी भक्ति। और दूसरा अनन्य का अर्थ है निरंतर, उसके बीच में कहीं भी बाधा न पड़े, धारावाहिक। इसलिए कभी कभी जैसे धारणा होती है योग में, ऐसे भगवान हमारे बुद्धि भगवान का धारावाहिक ध्यान करे। ये कुंती महारानी का भाव है भागवत में कि गंगा जैसे गंगोत्री से उतर के सागर तक जाती है बगैर रुकावट के, ऐसे मेरी वृत्ति, मेरी स्मृति, मेरी बुद्धि, मेरी मति आपकी ओर ही बहती रहे, इधर उधर कहीं नहीं जाए। इसको बोलते हैं अनन्य। अनन्य भक्ति से वो परम पुरुष सुलभ प्राप्त होता है। बोले वो परम पुरुष कहाँ है? एक इसका भाव ये भी है कि मरने के बाद प्राप्त होगा। भक्ति में मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जो भगवान इस वक्त अपने धाम में है वो भगवान सर्वत्र है। प्रभुपाद जी प्रवचन में कह रहे हैं जब आप चलते चलते हरे कृष्ण जपते हो ना तो कृष्ण आपके साथ चल रहा है। भगवान के नाम में और भगवान में अंतर तो है नहीं। अगर आपका हृदय शुद्ध है और भक्ति अनन्य है तो चलते चलते आपके मुख से राम कृष्ण निकलता है तो साक्षात भगवान आपके साथ चल रहे हैं। बहुत ये ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी बचपन का उदाहरण दे रहे हैं। बोला छोटे बच्चा मेरा था और 5 साल का था, हम रात को चांदनी में चल रहे थे तो बच्चा कह रहा है ये चांद हमारे साथ क्यों चलता है, हम चलते हैं तो लगता है चांद हमारे साथ चल रहा है, सूर्य हमारे साथ चल रहा है। जब ये सितारे ऐसे लगते हैं कि हमारे साथ चल रहे हैं तो ये तो भौतिक है, भगवान साक्षात चिन्मय है, वो फिर हमारे हाथ क्यों नहीं चलेगा। ऐसे बालक एक डरता था, उसकी माँ ने कहा कि माँ को कहता था स्कूल जाना पड़ता है, गुरु के आश्रम में बीच में जंगल पड़ता है, बड़ा भय लगता है। माँ बेचारी बहुत सरल थी, बोला बेटा तुम्हारा एक मित्र है गोपाल, उसको बुला लिया करो, आ जाएगा। उसने तो ऐसे कह दिया तुम गोपाल गोपाल करते जाओगे, तेरा मित्र है आ जाएगा, और उसको भय लगा, उसने बोला गोपाल गोपाल, और भगवान श्री कृष्ण साक्षात आके उसकी उंगली पकड़ के स्कूल के दरवाजे तक रोज छोड़ देते। मैया पूछती बेटा तुम्हारा अब डर नहीं लगता? बोला वो गोपाल आता है जब बुलाता हूं। मैया ने कभी नहीं देखा था, मैया ने केवल सुना था, लेकिन उस बालक का हृदय इतना शुद्ध था कि भगवान साक्षात प्रकट होके उसके संग संग चलते। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में मई जून में सूर्य के नीचे बहुत घाम में बहुत गर्मी में भगवान का सुमरण कर रहे हैं अनन्य भक्ति से। तो राधा रानी अपने आंचल से उनके ऊपर छाया कर रही है कि भक्त को गर्मी न लगे, और पानी का तालाब है कुंड है तो कोई पशु पीने ना आए। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं कि कहीं कोई हिंसक पशु आके इस महात्मा को कष्ट न दे। इसको कहते हैं कि नाम जपने वाले के भगवान छाये से भी नजदीक खड़े होते हैं, आंख की पलकों से भी नजदीक होते हैं। तो अनन्य भाव से भक्ति से भगवान मरने के बाद मिलते हैं ऐसे नहीं, जीते जी जीवन मुक्त भक्तों के भगवान निरंतर साथ में होते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसा कोई समय नहीं है जब मैंने ऐसा अनुभव किया हो कि मैं अकेला हूं, मेरा गुरुदेव मेरे साथ है, और जहां भगवान का शुद्ध भक्त है वहां निश्चित रूप से भगवान साथ है। और ये उदाहरण पहले दे चुके हैं, जहां बछड़ा जाता है वहां गाय जाती है, जहां भक्त जाता है भगवान उसके पीछे अपने आप चले जाते हैं, भगवान को पीछे। और वैसे तो हरे कृष्णा में ये हरे शब्द राधा जी को संबोधन है, और राधा शब्द रा कहने से भगवान कृष्ण पीछे आगे खड़े हो जाते हैं कि ये धा कहे तो पूछूं कहां है। तो उनको इतना प्रिय लगता है ये शब्द, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जपने वाले के ऊपर राधा कृष्ण की छाया निरंतर रहती है, उनकी सुरक्षा निरंतर रहती है। तो भगवान मरने के बाद मिलेगा ये नहीं है। जब नारद ने पूछा कि श्री कृष्ण कहाँ मिलोगे तो कहा नाम तिष्ठामि वैकुंठे न योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मदभक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मरने के बाद वैकुंठ में मैं मिलूंगा ये बात नहीं है, घर छोड़ के हिमालय में जाके योगी बनूंगा तो मिलूंगा ये बात नहीं है। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? बोला जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, सुमरण करते हैं, जप करते हैं, वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। आप पानी पानी कहेंगे तो पानी नहीं आएगा, क्योंकि पानी जड़ है, उसको थोड़ी मालूम है आप बुला रहे हो। लेकिन आप इतने बैठे हैं, जीवित आदमी मैं किसी का नाम लेके कहूं कि भाई धर्मपाल आ जाओ कि गोपाल आ जाओ तो गोपाल भागता हुआ आएगा सब में से। तो भगवान तो चिन्मय चेतन है, उसका नाम लेते हैं तो उसको मालूम है कि मेरा नाम ले रहे हैं। और भगवान अपने नाम से बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अनजान में भगवान के नाम का आभास भी हो जाए भगवान को। ये चेतना महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि ये बहुत से लोग नास्तिक हैं, विधर्मी हैं, धर्म के विरोध हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते भगवान आपका अवतार ही पतितों के उद्धार के लिए हुआ है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि भगवान अपने नाम से इतना प्रेम करते हैं कि कोई आदमी कहे रथ में महेशी जा रही है और उस वक्त अचानक उसका प्राण निकले तो भगवान कहते रथ से र ले लेंगे, महेशी से म ले लेंगे, बोलेंगे इसने राम उच्चारण किया है, इसको मुक्त कर दो। कि भगवान तो नाम आभास से भी मुक्ति दे देते हैं भाई, जिसमें कैसे भी शब्द राम बन जाए अंत समय, मरते समय किसी ने देखा कि कोई एक सूकर ने आके उसको धक्का दिया और गिरते हुए मरते बेचारा ने कह दिया हराम, भाई सूअर है हराम है, तो हराम को ही भगवान ने हाय राम समझ लिया। और भगवान इतने दयालु हैं, इसलिए मैं सोचा कि ये पंजाब वाले रोज राजमा पकाते हैं तो राजमा में तो राम बन ही जाता है रोज, क्या है राजमा, तो रा और मां दोनों आ गया, और खाते खाते राजमा कहीं चल दिया तो भी मुक्ति हो जाएगी, नाम ले लिया तो। तो भगवान अपने नाम से इतना प्रेम करते हैं, अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया तो भगवान ने चार यम, तीन यमदूतों के ऊपर चार विष्णु दूत भेज दिए। तो इसका भगवान अपने नाम से बहुत प्रेम, ये मनोविज्ञान है। आपका नाम लेके आपकी प्रशंसा करें, आपको प्रशंसा हो, आपको बहुत बड़ा आनंद मिलता है। तो ये हमारे अंदर आया कहां से भाव, भगवान को भी अपनी महिमा सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए कोई भगवान की महिमा सुनने के लिए घर से निकलता है तो भगवान सचेत होकर हृदय में बैठते हैं, मेरी कथा सुनने जा रहा है, मेरा कीर्तन करने जा रहा है, तो भगवान बड़े अनुग्रह करते हैं उसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि मरने के बाद, तब कहते हैं भगवान कहां है, यस्य अंतःस्थानि, यस्य भगवान अंतः उसके अंदर, स्थानी हम सब भगवान की गोद में बैठे हैं। ये पूरा विश्व क्या है, भगवान का विराट स्वरूप है। और भगवान यहां अपनी शक्ति के द्वारा, भगवान सर्वत्र कैसे है, प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है कि गोलोक एव निवस्यति, अपने गोलोक में बैठे हुए भी अखिलात्म भूता, अखिल मतलब सर्वत्र, जहां जहां भी प्राणी है वहां तक भगवान पहुंचते हैं। बोला कैसे पहुंचते हैं, बोला दो प्रकार से पहुंचते हैं, भौतिक जगत में भगवान अपनी बाहर अंग शक्ति के द्वारा सर्वत्र व्यापक है, और अंत और अध्यात्म जगत में भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा सर्वत्र संचालन चला रहा है। अब एक प्रश्न ये पूछा जाए कि मुक्त लोग ज्यादा हैं कि बद्ध लोग ज्यादा हैं? हाँ जी, बद्ध ज्यादा है मुक्त? मुक्त ज्यादा है। ये कैसे समझ में आएगा? बोले जेल में लोग ज्यादा हैं उज्जैन में के बाहर? बाहर ज्यादा है, जेल में कम है। ऐसे तीन त्रिपाद विभूति, तीन चरण आध्यात्मिक जगत है, एक पाद विभूति भौतिक जगत है, और उस एक पाद में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो जो आध्यात्मिक जगत है वहां भगवान की अंतरंग शक्ति सर्वत्र सब चीजों का संचालन चलाती है, भौतिक जगत में भगवान की बाहरंग शक्ति सारा संचालन चलाती है। लेकिन भगवान के अनन्य भक्त बाहरंग शक्ति के प्रभाव से मुक्त होते हैं, वो सीधे अंतरंग अंतरंग शक्ति की गोद में उनका पालन करती है अंतरंग शक्ति। ये भगवद गीता के नवें अध्याय में आएगा, महात्मानस्तुमाम पार्थ देविम प्रकृतिमाश्रिता, जो महात्मा है अनन्य मेरे भक्त हैं वो मेरी देवी प्रकृति के संरक्षण में है, और देवी प्रकृति का प्रतीक राधा रानी है, तो वो मां की गोद में है। भगवान प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहा करते थे, राधा एंड कृष्ण इज गॉड। ये कभी नहीं कहा आर गॉड, राधा कृष्ण भगवान है, भगवान है नहीं है, क्योंकि एक है भगवान का, एक है मातृभाव जो है करुणामयी, और एक भाव पिता का है, पिता का भाव वो संयम के लिए है, वो सबका संयम कराने के लिए है। इसलिए वेद में भगवान को माता च पिता त्वमेव, माता भी भगवान को कहा है, पहले माता कहा है क्योंकि माता करुणा है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में भी पहले माता को संबोधन है और फिर कृष्ण को संबोधन है जो सर्व आकर्षक है, फिर राम शब्द का उच्चारण है जो आनंदमय है। तो माता जो भगवान का स्वरूप है वो दयामय है, और भगवान की अंतरंग शक्ति जीव मात्र की माता है। और प्रभुपाद जी ने तो हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा, जब हम हरे कृष्ण जपते हैं तो जैसे छोटा अबोझ बालक अपनी माँ के लिए बिलक के रोता है और माँ सब काम छोड़ के उसको गोद में उठा के अपना हृदय का अमृत दूध पिलाती है, ऐसे जब भक्त भगवान के नाम का कीर्तन उस बच्चे के जेन्युइन क्राय ऑफ ए चाइल्ड फॉर मदर, जेन्युइन क्राय जब ऐसे प्रेम से कीर्तन करते हैं तो राधा रानी उन बालकों को गोद में लेकर और भगवान के चरणों का अमृत पिलाती है। यस्य अंत स्थानी भूतानी, सारा ही जगत भगवान में स्थित है। कैसे? भगवान की शक्ति में स्थित है। जैसे हम सब भारत गवर्नमेंट भारत सर्वा सरकार में रह रहे हैं, सरकार जो है वो शक्ति है। और फिर कहते हैं ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा उस भगवान के द्वारा ये सारा जगत प्रवेश किया गया है। भगवान ने सारे जगत में प्रवेश किया है। कैसे? अपनी शक्ति के द्वारा। तो भक्ति से उस भगवान को जीते जी पा सकते हैं, ये मुख्य बात है, मरने के बाद नहीं। योगी तो अंत समय का ध्यान करता है, ले भक्त तो जीते जी भगवान के संग जीता है। किसी को पूछा कि भाई तुमने भगवान को देखा है? उसने कहा देखा है, हम तो रोज देखते थोड़ी है। केवल जो भगवान को रोज भोग लगता है वही प्रसाद खाते हैं, नहीं तो क्या पागल है? सुबह 4 बजे उठ के मंदिर में भगवान को देखने नहीं जाते तो काहे के लिए जाते हैं? और बाहर आते हैं तो रसगुल्ला प्रसाद मिलता है, भगवान को जो बाल भोग मिला है, तो आप देखने की बात कर रहे हो? हम तो वही खाते हैं जो भगवान खाते हैं। पूरा ये तो मूर्ति है। तो हमने बोले इतने सारे लोग पागल हैं जो सुबह सवेरे जाते हैं मूर्ति का दर्शन करने? ये मूर्ति तो बाहर लगी हुई है चौराहे के ऊपर, कोई जाता है क्या वहां गुलाब जामुन रसगुल्ला चढ़ाने? ये तो साक्षात यही अंतर है महाभागवत में और कनिष्ठ भक्त में। कनिष्ठ भक्त को जगन्नाथ मूर्ति दिखता है और महाभागवत को साक्षात कृष्ण बलराम दिखते हैं। और महाप्रभु जब जगन्नाथ के दर्शन करते थे तो त्रिभंग ललित बांसुरी बजाता हुआ दिखता था। ये साक्षात भगवान है और साक्षी, साक्षात वो उसको कहते हैं जो साक्षी दे। और एक तो भगवान वृंदावन से चलकर एक भक्त की साक्षी देने के लिए दक्षिण भारत पहुंच गए, उसका नाम साक्षी गोपाल हो गया। एक भगवान का विग्रह वृंदावन से चल के आज भी प्रतीक प्रमाण रूप में साक्षी गोपाल जगन्नाथ का दर्शन करके वापस आते हैं, तो साक्षी गोपाल का दर्शन करना चाहिए, तब दर्शन पूरा होता है। पहले क्षेत्रपाल भुवनेश्वर का दर्शन करना चाहिए, जो आधा विष्णु और आधा शंकर है, भुवन ईश्वर है, सारे जो जो भी ज्योतिर्लिंग है लिंग है उनका भुवनेश्वर में जो भगवान है वो ईश्वर है। फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर साक्षी गोपाल का, तो एक साक्षी गोपाल एक भक्त के लिए चल के साक्षी देने गए, लेकिन प्रभुपाद के पीछे तो सैकड़ों राधा कृष्ण और गौर निताय पूरे विश्व में उनकी साक्षी देने के लिए चले गए। आज जितने विश्व में ये भगवान के विग्रह विराजमान है ये प्रभुपाद के पीछे चले गए। तो भगवान सर्वत्र है, भौतिक आंखों से भौतिक देखता है। प्रभुपाद ने फिर एक श्लोक उद्धृत किया ब्रह्मा संहिता का,
प्रेमंजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतसदेव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
जिसके आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है उसको तो त्रिभंग ललित गोविंद क्षण क्षण में हृदय में दर्शन देता है और कण कण में दर्शन देता है।
नयनम गलदश्रुधारया,
भगवान के नाम लेते अगर आंसू की धाराएं बहेंगे तो एक एक आंसू के कतरे में भगवान नृत्य करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भाव उसका ऐसा होना चाहिए। तो जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा भगवान दिखेगा, प्रेम का चश्मा लगाएंगे तो साक्षात भगवान दिखेगा और संसारी चश्मा लगाएंगे तो मूर्ति दिखेगी। तो भगवान निरंतर इस जगत के कण कण में, कौन सा भगवान बोला, खीर सागर में सहन करने वाला विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में कण कण में और कण के बीच में भी है, और भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वत्र विस्तृत पड़ा है। अब आगे भगवान प्रसंग बदलते हैं, कहते हैं अर्जुन मैं अभी बता रहा हूं आपको कि योगी जो साधन निष्ठ है तो कैसे समय चुनते हैं, उस समय में प्राण अपना शरीर छोड़ते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, और अगर योगी का साधन ठीक नहीं है तो वो कहीं और स्थान चंद्रलोक आदि में जाकर स्वर्ग में फिर वापस आते हैं। तो अब ये तीन चार श्लोक इनको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं देवयान मार्ग पितृयान मार्ग। यान कहते हैं जैसे आजकल कहते हैं मंगलयान, यान का मतलब गाड़ी और यान का मतलब मार्ग। तो दो मार्ग है देवयान मार्ग पितृयान मार्ग। योगी अभ्यास के द्वारा अपने प्राण को रोकते हैं और जब चाहें उसको कहते हैं इच्छा मृत्यु, उनको स्वच्छंद मृत्यु, जब चाहें तब अपने को शरीर छोड़ सकते हैं। और भीष्म पितामह ऐसे उदाहरण है जो युद्ध तो समाप्त हो गया था लेकिन दक्षिणायन चल रही थी इसलिए उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण और दक्षिणायन ये छह छह महीने के दो विभाग हैं सूर्य के चलने के। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। यत्र काले तो अनावृतम आवृतम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भर्तृषभा। हे भर्तृषभ, हे भर्तवस्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं आपको अब समझाता हूं कि योगी कौन से जमें समय अगर प्राण त्यागेगा तो वापस नहीं आएगा। अनावृतम वापस नहीं आता है, आवृत्ति नहीं होती है, गया तो मुक्त हो गया। और प्रयाता यान्ति कालम आवृतम चैव, और कौन से समय जाएगा तो वापस आना पड़ेगा, वह मैं आपको समय बता रहा हूं। तो भगवान अब पहले देवयान मार्ग बता रहे हैं जिसमें जाने वाला वापस नहीं आता है। अग्निर ज्योतिर अह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्निर ज्योतिर अह, अह का मतलब दिन, शुक्ल का मतलब पक्ष, ये चंद्रमा के कारण होता है पक्ष, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और फिर सूर्य के चलने से बनता है दो विभाग, क्या छह महीना उत्तरायण, और ये उत्तरायण शुरू होती है मकर राशि में, जब सूर्य आता है तो उत्तरायण शुरू होती है और ये छह महीना चलती है। यत्र प्रयाता गच्छन्ति, इस समय अगर उसने शरीर त्यागा, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, जो वेद को जानते हैं वो कहते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो आध्यात्मिक जगत में जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो ये क्या, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है जो जो नाम लिखे हैं, अग्निर ज्योतिर अह शुक्ल क्षणमासा, इन सब के देवता हैं। रात का, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, अग्नि देवता, ज्योति देवता, ये देवता उस आत्मा को अपने मार्ग से आगे बढ़ा देते। अब इसको आप ऐसे समझें कि एक हम चलते हैं रोड के ऊपर, गाड़ी चलाते हैं, जहाज चलता है आकाश मार्ग से, तो वो अपनी गति से जाता है। ऐसे योगियों को अलग रास्तों का पता है जिससे वो चलते हैं। जैसे हनुमान जी 100 योजन पार करके गए, महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई और सीधे त्रिकूट पर्वत में जाके लंका में उतरे, तो वो सामान्य मार्ग से नहीं गए थे, वो देवताओं का मार्ग है जिसकी गति भी अलग है और उस मार्ग में अन्य कोई प्रयास नहीं है। 5 साल पहले, मेरे ख्याल में शायद 4 या 5 साल पहले, कुछ भक्तों के संग निर्जल एकादशी करने के लिए लेंसडाउन एक हिमालय में ठंडा जगह है, 4,500-5,000 फुट ऊपर है, जहां आर्मी का बहुत बड़ा गढ़वाल रेजिमेंट का पूरा, वहां वो है ही आर्मी की एरिया। वहां एक आर्मी के बंगले में रुके थे, तो उसके बाहर एक पत्थर पे लिखा था कि जब लेंसडाउन अंग्रेज यहां घर बनाने के लिए आया, ठंडा मौसम था इसलिए, तो पहला मंजिल बन गया, दूसरे मंजिल की तैयारी की तो कुछ देवों ने आकर कहा ऊपर मंजिल मत बनाओ, ये हमारा बद्रीनाथ जाने का निरंतर रास्ता है। ये अंग्रेज का लिखा हुआ, अंग्रेजी में वहां बोर्ड पड़ा है लिखा हुआ कि ये हमारा बद्रीनाथ जाने का मार्ग है देवों का। उसने तो कहा कि ये क्या करेंगे, तो कौन ऐसे ही है, तो उसने ऊपर जैसे चुनना शुरू किया, अंधा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसने काम को उधर छोड़ दिया और वो सारा बिल्डिंग उस वक्त में आर्मी के हेल्थ डिपार्टमेंट को कुछ पैसा लिखाए इतने में दे दिया। तो ऐसा मार्ग ऊपर है और ऐसी शक्तियां योगियों के पास है जिससे वो आज भी, प्रभुपाद जी कहा करते थे कुंभ मेले में, इन पवित्र नदियों के मार्ग से भी कुछ साधु आते हैं जिसको हम पहचानते नहीं हैं, और कुछ तो आकाश मार्ग से भी आ सकते हैं, उनको ये सिद्धियां होती है और ये सिद्धि योग से प्राप्त होती है। तो ये रास्ते हैं जिनके ऊपर जो जो देवता होगा उस रास्ते से जाने वाले को अगले देवता तक पहुंचाएगा, ऐसे वो ब्रह्म तक पहुंच जाएगा, और जो इस रास्ते जाएगा उसको वापस आने की जरूरत नहीं है, ये वन वे रास्ता है, इसमें वापस आ ही नहीं सकता, बस गया गया। अब वापस कौन आते हैं, उसके कौन देवता हैं, उसका वर्णन है। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। अब कहते हैं दूसरे योगी जो धूमो कहते हैं धुआं, रात्रि रात को, कृष्ण पक्ष अंधेरी रातों के 15 दिन, और दक्षिणायन में अगर शरीर छोड़ते हैं तो वो चंद्रलोक में जाते हैं, और वहां सुख भोगने के बाद, अमृत पीने के बाद, वो योगी वापस आते हैं, इसका मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसको कहते हैं पितृयान मार्ग, वो देवयान मार्ग है, ये पितृयान मार्ग है। और इसके बाद भगवान अर्जुन को कह रहे हैं शुक्ल कृष्ण गति है एते जगत शाश्वते मते एकायाति अनावृतम अन्य नावर्तते पुनः। अभी दोनों मार्गों का एक श्लोक में बोलते हैं शुक्ल कृष्ण गति है एते, जो शुक्ल में जाता है चांदनी में जाता है। इसके देवताओं का अर्थ तो हमारे आचार्यों ने किया है, लेकिन दूसरा इसका अगर एलोगरिक अर्थ करें तो शुक्ल का मतलब जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, और कृष्ण का अर्थ करें जो अंधकार में है, जो अज्ञानी है। जो शुक्ल का अर्थ है प्रकाश और कृष्ण का अर्थ है अंधकार। तो जो प्रकाश के मार्ग से जाता है जगत शाश्वते मते, वो शाश्वत जगत को पहुंचता है। ये मेरा मत है। उनमें से एकाए यान्ति, एक जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। शुक्ल पक्ष में जाने वाले, प्रकाश में जाने वाले, उत्तरायण में जाने वाले वापस नहीं आते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। और अन्य और जो दूसरे हैं जो दक्षिणायन में जाते हैं और कृष्ण पक्ष में अंधकार में जाते हैं, वो अनावर्तम पुनः वो वापस लौट के आते हैं। ये स्वर्ग आदि में जो भी जाता है वो वापस लौट के आता है। ये नवे अध्याय में श्लोक है तेतंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति एवं त्रैभन्व धर्मम अनुपर्पणा गतागतम काम कामालभन्ति। ये वेद के विधान से साधन करके स्वर्ग तक जाएंगे भी तो पुण्य पूरा होने के बाद स्वर्ग से वापस धरती के ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन देव मार्ग से जाएंगे। अब अर्जुन ने थोड़ी देर देखा कि अभी मैं लड़ाई कर रहा हूं, कहीं से कोई बाण आए तो अभी तो दक्षिणायन है, पता नहीं मैं तो कोई साधन नहीं कर रहा हूं, तो भक्तों का क्या होगा? ये तो योगियों की बात कर रहे हैं भगवान, भक्तों को क्या है? तब ये श्लोक आश्वासन है आप सबके लिए, नैति श्रुति पार्थ जानन योगी मोह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। नैति श्रुति, इन दोनों को भूल जा, कोई जानने की जरूरत नहीं है। हे पार्थ, दो बार पहले पार्थ कह दिया, क्योंकि देखा कि अर्जुन तो सोच रहा है कि मैंने मार्ग ऐसे बताए, युद्ध में कौन सा मार्ग चुन सकता है कोई? एक भीषम इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए प्राण को रोक के बैठा था। लेकिन भीषम पिता कौन से उत्तरायण के लिए बैठा था? एक तो उत्तरायण है जो मकर संक्रांति को आती है, वो तो हर वर्ष सूर्य के भ्रमण से आती है, लेकिन भीषम को एक और उत्तरायण का इंतजार था, और वो दूसरा उत्तरायण है कृष्ण। वो उत्तरायण कृष्ण कैसे है? बोला नारायण को नारायण क्यों कहते हैं? बोला नर सयनम नर अयनम यस्य स नारायण, जल जिसका घर हो वो नारायण, क्योंकि हमेशा सागर में ही सोते हैं। रामायण किसको कहते हैं? बोला राम अयनम यस्य स रामायण, राम का घर को रामायण कहते हैं। तो उत्तरा के उदर को जिसने अपना घर मान लिया वो उत्तरायण, उत्तर गर्भ यस अयनम स उत्तरायण, वो परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया, तो कृष्ण भी उत्तरायण है, उसके दर्शन के लिए भीष्म को ज्यादा लालसा थी, उसकी उसको इच्छा बहुत ज्यादा थी। तो भगवान उत्तरायण भी है। अर्जुन पहले कहा हे पार्थ, हे मेरे प्रिय, वो मेरे भाई, वो मेरे मित्र, तुम्हें इन दोनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोहयंते कश्चन, इसमें तुम मोहित मत हो। क्यों? भक्तोसी में सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, तो क्या करूं। तस्मात सर्वेशु कालेशु, हमने पहले भी कहा था, ये महावाक्य गीता का दूसरी बार आया, इसलिए हर समय तस्मात सर्वेशु कालेशु योग युक्तो भव अर्जुन। अर्जुन तुम योग में युक्त रहो। युक्त रहो का मतलब योग में जुड़े रहो, मुझसे जुड़े रहो। तो भगवान से कैसे जुड़े रहें, हर समय भगवान से कैसे जुड़े रहें, ये भगवान ने कह दिया। इसलिए हर समय अर्जुन तुम मुझसे जुड़े रहो। अर्जुन के लिए तो आसान था, भगवान आगे बैठा था, भगवान अर्जुन पीछे बैठा था, वो तो रथ के ऊपर जुड़ा हुआ ही था। लेकिन सबके लिए भगवान से जुड़ा रहने का साधन क्या है, कैसे हम सब भगवान से जुड़े रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यक्ति जब कथा में आता है, सत्संग सुनता है, मंदिर में जाता है, तो मन करता है कि सदा भगवान से संबंध बना रहे। लेकिन जैसे वापस लौट के घर की ओर जाता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है। ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है कि नहीं होता है? इसलिए एक भक्त ने पूछा महात्मा को, महाराज कथा में आते हैं तो बड़ा आनंद आता है, लगता है भगवान की कथा सुनते रहे, भगवान के कीर्तन में डूबे रहे, लेकिन वापस घर दुकान पे जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो महाराज ने उत्तर सीधा न देकर कहा कि देखो, एक बांस की टोकरी पड़ी है अपने कमरे में, जा सिप्रा नदी से भर के आ। तो बेचारा बांस की टोकरी को ले गया भरने के लिए, जैसे बाहर निकाले भर के तो सब बह जाए, 50 बार चक्कर डाला निकाला डाला निकाला, भरा नहीं, मोट लौट के आया, बोला महाराज ये बांस का टोकरा भरता नहीं है। बोला क्यों? बोला इसमें बड़े छेद पड़े हैं। बोला क्या होता है? बोला सब कुछ बह जाता है। बोला यही तो तेरे प्रश्न का उत्तर है, तुम आते हो यहां बैठते हो लेकिन तेरे दिमाग में बहुत बड़े छेद पड़े होते हैं, कथा करते हैं वो बाहर निकलते निकलते सारी बह जाती है। तो बेचारा दुखी हो गया। तो महाराज ने कहा चिंता मत कर बेटा, देखो जब तुम टोकरी ले गया था उस वक्त तो बेचारी के ऊपर मिट्टी बहुत थी और कड़क थी, तुमने 50 बार नदी में डुबाया है तो भरी तो कोई बात नहीं, लेकिन धुल के तो आई है, कुछ नरम तो हो गई है ना, तो बार बार आने से कुछ धुल जाएगी, पहले कुछ नरम हो जाएगी, लेकिन आपको अगर उस टोकरी को भरा रखना है तो क्या करोगे? आपको उस टोकरी को भरा ही रखना है कि उसमें से कुछ बह न जाए, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, उस टोकरी को पानी में रख दो, नदी के अंदर भरी पड़ी होगी, भरी पड़ी होती है कि नहीं होती है? जब तक पानी में पड़ी होगी टोकरी भरी पड़ी होगी, बाहर निकालते हो तो जाए। तो हर समय भगवान से जुड़ा रहना है, तो भगवान के भक्तों के संग में रहोगे तो भगवान से जुड़े रहोगे, सत्संग में रहोगे तो भगवान से जुड़े रहोगे। इसलिए सत्संग निरंतर चाहिए। शरीर का भोजन 3 बार खाने का नियम हमने बना रखा है, नाश्ता करना है, दोपहर का भोजन करना है, रात को खाना है। ऐसे वेद ने आत्मा के भोजन का भी त्रिकाल संध्या, और ये संध्या नहीं करता है उसको प्रतिवाय लगता है। प्रतिवाय का मतलब अपराध लगता है नहीं करने का। प्रातः संध्या, दोपहर की मध्यान्ह संध्या, सायंकाल संध्या, संध्या का एक अर्थ होता है दो को जोड़ने वाला संध्या लगाना, असल में संध्या का मतलब है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, वो संध्या लगाना है भगवान के साथ जुड़ना है। और ये तीन तीन काल की संध्या का नेम है। स्कान में प्रभुपाद जी ने कहा प्रातः भागवत का सत्संग, सायंकाल को भगवत गीता का सत्संग, और रात को सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष उसका एक अध्याय कुछ पढ़ के सो जाओ। सुबह नाश्ता हो गया, दोपहर की रोटी, और रात को गर्म गाय का दूध हो गया, तो तेरा आध्यात्मिक भी पुष्टि और शरीर की भी पुष्टि दोनों होना चाहिए। ये रोज होना चाहिए, जैसे स्नान रोज करना है क्योंकि मल धोना है, ऐसे ये चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय रूपी दर्पण का मार्जन रोज करना है। तो योग युक्त भव अर्जन का मतलब है निरंतर भक्तों के संग में हरि कथा और कीर्तन में लगे रहो। बहुत क्या मुश्किल है, 60-70-80 साल जीते। एक तो भागवत में प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठी दैत पुत्रों को कहा 100 साल अगर जीवन किसी की मान ली जाए तो 50 साल तो सोने में ही चले जाते, 50 साल तो सोने में ही जाते हैं, 10 साल बचपन में चले गए कुछ नहीं समझ में आया, और 10-20 साल की उम्र तक तो लड़कों से खेल कूद में पूरे हो गए, और आखिरी के 10 साल बुढ़ापे में चल फिर नहीं चाहेंगे। बाकी बचे कितने, 15 या 20 साल मुश्किल से बचते हैं, इतना ही समय बचता है असल में सार्थक हमारे पास, और वो समय है जब भगवान को याद करना चाहिए, तब दुनिया के काम में लग जाते। बहुत बड़ा विश्लेषण किया हुआ है कि समय हमारे पास है कितना। नींद तो सबको 8 घंटे रोज का कैसे भी कोई पड़ा रहता है, वो योगी होते हैं जो 2-3 घंटे सोते हैं, वो भगवान के स्मरण में रहते हैं। जितनी नींद है वो तो समाज बेकार गया ही गया, और क्या हुआ। मां तुफले बिबाजी जवानी बे मस्ती, पीरी बे सुस्ती के खुदा परस्ती, ये परसे पारसी में बोला है तुफले बिबाजी, बचपन खेल कूद में चला गया, जवानी बे मस्ती, जवानी मस्ती में चली गई, पीरी बे सुस्ती, बुढ़ापा आया तो हाथ पांव काम नहीं कर रहे, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता है, तो खुदा प्रस्ती, फिर भगवान का कब भजन करोगे। पांच साल बचपन में गए, 10 साल, ये समय व्यर्थ जा रहा है। जो अच्छे से अच्छा समय भगवान के भजन का है वो समय हमारा संसार के लोभ लालच में और भोग विलास में पूरा हो रहा है, कितनी बड़ी हानि हो रही है। तो भगवान ने हम सब के लिए आश्वासन दिया कि कलयुग है योग। अब तो भगवान जब उपदेश दे रहे हैं द्वापर का अंतिम चरण था, भगवान के जाते ही द्वापर पूरा हुआ और कलयुग शुरू हो गया, तभी कह रहे हैं कि ये योग का अभ्यास अर्जुन संभव नहीं है एक दृष्टि से, और तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारे को चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देवता उस रास्ते वाले ले जाते हैं उनको, लेकिन भक्त को लेने के लिए 12वें अध्याय में कहा है मैं स्वयं आता हूं गरुड़ के ऊपर चढ़ के, भवामी निचरात पारत मई आवेशित चेत सम, मृत्यु संसार सागरात भवामी, मृत्यु संसार सागर से मैं तत्काल उसको सीधा ही उठा लेता हूं, स्वयं आके गरुड़ के ऊपर चढ़ के आता हूं। बोला उठाते कैसे हो, बोला चुटिया से पकड़ता हूं, क्योंकि ये मैंने इसलिए रखवाई है कि पकड़ना बहुत आसान है डूबते कुआं से, माताएं सबका तो उधार हो जाएगा चुटिया पड़ी है, लेकिन हमारे भाइयों के लिए भगवान हाथ ऐसे घुमाएगा होगी नहीं तो बड़ी परेशानी होगी, ये पक्का होना चाहिए। तो भगवान स्वयं आते हैं, नहीं तो भगवान के विष्णु दूत आते हैं। तो वहां किसी और देवता के रास्ते से जाने की जरूरत नहीं, वो मार्ग ही अलग है, वो भागवत मार्ग है। अब ये अंतिम श्लोक इस अध्याय का पूर्ण आहुति का पढ़ लीजिए।
वैदेशु यज्ञसु तपस्सु चैव दानेषु यत पुण्य फल प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम।
अब मानो के अर्जुन पूछे के भाई वेद का पाठ करने की जरूरत पड़ेगी, यज्ञ करने की जरूरत पड़ेगी, तपस्या करने की जरूरत, दान देना, ये सब पुण्य के कार्य तो वेदों में लिखे हैं। तो भगवान कहते हैं जो वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान देने से और भी जो पुण्य कर्म करने से फल मिलते हैं, अतैति उन सब से बढ़कर, अतैति का मतलब इन सब से अति ज्यादा, इन सब से बढ़कर जान लो विदित्वा, इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम, आदि गोविंदम आदि पुरुषम, वो जो भक्त है मेरा वो तो उस आदि स्थान को प्राप्त करेगा, इनका तो फल मिलेगा ही अपने आप में, लेकिन इससे आगे जो उनको नहीं मिलता है वो भी इनको मिल जाएगा। प्रभुपाद जी का इसका तात्पर्य बहुत लंबा है और बड़ा है। उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वैदिक जो वेद की हमारी सभ्यता है उसमें बालक को पहले ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है, 5 से 20 साल तक कम से कम वेद का अध्ययन करता है, तब चरित्रवान ग्रस्त बन सकता है। और फिर एकदम प्रभुपाद जी कहते हैं ये वेद का अध्ययन करना कोई ऐसे शब्दों से खिलवाड़ करना नहीं है, चरित्र निर्माण के लिए है। इसलिए एक प्रश्न अगर आपसे पूछ लें, आज विश्व के अंदर चरित्र नाम की चीज देखने को नहीं मिल रही है, मॉरेलिटी बहुत डिक्लाइन हो रही है। ये अंग्रेजी में जब हम पढ़ते थे तो हमारे को एक पढ़ाया जाता था, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, धन चला गया कोई बात नहीं, हाथ का मैल है फिर आ जाएगा, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, स्वास्थ्य में त्रुटि पड़ गई तो कुछ चिंता करो, चाणक्य पंडित ने कहा है उधार जल्दी उतारो, आग को जल्दी बुझाओ, और अगर बीमारी है तो तत्काल इलाज करो, नहीं तो फिर ये बढ़ जाएगी तो इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। उधार कर्जा आग और बीमारी, तत्काल उसका निदान करना चाहिए। वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, चरित्र गया तो जीवन पे ऊपर पानी फिर गया। आजकल लोग कहते हैं चरित्र जाए तो जाने दो लेकिन धन कभी नहीं जाना चाहिए, लोगों की बुद्धि बिल्कुल उल्टी हो गई है, चरित्र का इतना अभाव हो गया है। जैसे कपूर ना उड़ जाता है, पेट्रोल खोल के रखो तो उड़ जाता है, ऐसे विश्व के अंदर से मॉरलिटी करेक्टर चरित्र इवरपोरेट हो गया, उड़ के चला गया। क्यों? पानी पीना है तो गिलास में रखा है, नहीं तो लोटा होगा, नहीं तो कटोरा होगा, ऐसे कोई पात्र होता है तब जल पिया जा सकता है। तो चरित्र के लिए पात्र क्या है जिसमें चरित्र रखा जाए? कहते आध्यात्मिकता के पात्र में चरित्र टिकता है, आध्यात्मिकता का अभाव चरित्र के विनाश का कारण है। धर्म के मूल्य नहीं सिखाए जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में, इसलिए कोई बच्चा माता पिता का सम्मान करे घर में आके ये दिखता नहीं है, न चरण छूते हुए दिखता है, न सेवा करते हुए दिखता है, न माता पिता के चरण दबाते हुए दिखता है। वैदिक भारतीय संस्कृति जो हमारी है, भगवान श्री कृष्ण का 5 साल के होते पिताजी की गैया चराने के लिए जाते थे, पिताजी को आराम मिलता था, तो हमेशा हमारे बच्चे अपने पूर्वजों के अपने कार्य को जाके बचपन से शुरू कर देते थे, 15 साल से पहले सारे कार्य को समझ जाते थे, दुकान कारोबार सब समझ जाते थे, बस इतना ही अक्षर पढ़ते थे और किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। और बालिका होती थी 5 साल से माँ के काम में हाथ बटाती थी, सफाई से लेके और चौका से लेके और रसोई तक। अब कोई लड़की माँ के साथ काम करती हुई दिखाई घर में नहीं देती है, कोई लड़का पिताजी का काम नहीं करता है, और न ही कोई माता पिता का और पढ़ाने वाले टीचर्स का। अब गुरुजी कहना तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पैसे लेके पढ़ाने वाले को गुरुजी नहीं कहते हैं, और वेतन लिया तो गुरुजी वाला का शब्द खत्म हो गया, किसी का आदर नहीं है, कोई सुनता नहीं है किसी की। क्यों? वो शिक्षा की पद्धति के ऊपर पानी फेर दिया, जिसमें मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये शिक्षा मिलती थी। तेरी माँ तेरे लिए पूजने है, तेरे पिताजी का आदर करो, तेरे गुरुजनों की सेवा करो, तीसरे नंबर पे गुरुजी आता है, पहले माता आती, और कोई अतिथि आए तो उसका सम्मान करो। ये कहां गया विज्ञान? वैदिक संस्कृति में अतिथि का कितना सम्मान था। महाराज युधिष्ठिर के राज में 5,000 रसोइया हस्तिनापुर में भोजन चालू रखते थे, कोई भी बाहर से आया भोजन खाए, ये राजाओं की व्यवस्था होती थी। ये होटल के ऊपर बेचने वाला भारतीय संस्कृति की चीज नहीं है। जहां अतिथि देवो भव है वहां कोई चीज बेचने की जरूरत है क्या? ये सब पाश्चात्य संस्कृति के कुरीतियां हमारे घुस ऐसे घुस गई है समाज में कि लोभी लालची बना दिया है कि अभी तो बेटा आया कॉलेज से वापस घर में, छुट्टियां थी, मां ने कह दिया बेटा घास बढ़ गया है थोड़ा, जो अपना छोटा लान है घास तो काट दे। बेटे ने गए घास काट दिया, बोला ये 5-6 कपड़े पड़े हैं इस्त्री कर लो, इस्त्री कर दिए। कहा बाजार से थोड़ा सामान लेके आना, ले आओ, लेके आ गया। दोपहर के भोजन के समय एक चिट्ठी लिखी मां को दिया कि घास काटने के 50 रुपये, इस्त्री करने के 25 रुपये, बाजार से सामान लाने के 25 रुपये, 100 रुपया दो। यही स्कूल से पढ़ के आया था कि एक काम इतने का होता है। मां बुद्धिमान थी, मां ने वो पर्चा रख दिया और रात को भोजन खाने के समय बच्चे के सामने एक पर्चा रखा, बेटा तुम्हारे को बचपन में दूध पिलाया, तुम्हारे लिए तुम्हारे मल मूत्र को मैंने धोया मुफ्त में, तुम्हारे लिए कपड़े लाई मुफ्त में, तेरे लिए बिस्तर बिछाया मुफ्त में, तेरे लिए भोजन बनाया मुफ्त में, तेरे लिए किताब खरीदे मुफ्त में, तुम्हें मालूम है ये मैं सब क्यों कर रही हूं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं बेटा। और बेटे ने जब ये पढ़ा तो आंखों में आंसू आया कि क्या मैं मूर्ख हूं कि 2 मिनट का काम किया है, पैसे मांग रहा हूं, आजीवन माँ ने सेवा की है और मुफ्त में किए, कि मुझसे तो प्रेम खत्म हो गया। इतना व्यवहार आ गया है, आध्यात्मिकता का अभाव है, चरित्र की गिरावट हो रही है, इसी की वजह से समाज में अंदर विश्वास खत्म होता जा रहा है किसी के ऊपर। पहले लोग जाते थे कहते कोई साथी मिल जाए तो अच्छा है, रास्ता कटेगा, अब किसी दूसरे आदमी को देखते हैं तो डर लगता है कहीं लूट न जाए। बिल्कुल उल्टा सा सोच उल्टी हो गई है। तो ये बहुत ये सत्संग, ये भगवत गीता की शिक्षा ये अनिवार्य है इस बिगड़े हुए समाज को, पाश्चात्य संस्कृति के उल्टे प्रभाव को धो के साफ करना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत बड़े अभियान की जरूरत है, बड़े स्तर के ऊपर आंदोलन की जरूरत है। और फिर भी माताओं, हम आपके विनती करके कहते हैं कि कलयुग में धर्म के सुरक्षा के दुर्ग की आप आखिरी दीवार हो। अगर आप लोगों ने कुछ धर्म का पालन अपने घर में नियमित रूप से करना शुरू किया तो आपके बच्चे उसको देखेंगे, बचपन में तो कुछ संस्कार उनमें आ सकते हैं। अगर आपने अपने घर में वातावरण धर्म का नहीं बना के रखा तो बच्चों को और कहीं से शिक्षा मिलने का अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। स्कूल में होती नहीं है, कॉलेज में होती नहीं है। कॉलेज स्कूल का तो ये हाल है, एक स्कूल में एक बार एक इन्विजिलेटर आया और स्टूडेंट से पूछा कि भगवान शंकर जी के भारी धनुष को जनक की दरबार में किसने तोड़ा था। बच्चे थर थर कांपने लगे, बताओ तुम। मैंने नहीं तोड़ा सर। इन्विजिलेटर टीचर को पूछता है, बच्चों को इतना पता नहीं है रामायण में कि शंकर जी के भारी धनुष को जनक की दरबार में किसने तोड़ा था। टीचर कहता है, सर माफ कर दीजिएगा, ये बच्चा है, हो सकता है टूट गया हो। हेडमास्टर के पास गया, हेडमास्टर को कहता है ये स्कूल का हाल है। लड़का कहता है मैंने तोड़ा नहीं है। मास्टर कहता है गलती से हो गया होगा। हेडमास्टर कहता है आजकल लड़के बहुत शरारती हो गए, कभी खिड़की तोड़ते हैं, कभी बेंच तोड़ते हैं, हो सकता है टूट गया हो, क्षमा करना। अरे राम, ये हाल है आज की एजुकेशन का। न मास्टर गुस्सा, मास्टर को पता नहीं, हेडमास्टर को पता नहीं, तो स्टूडेंट कहां से सीखेगा। ये धर्म की घर के अंदर दादी पहले राम कथा सुनाती थी, ये पहले भागवत कथा सुनाती थी, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, छोटे बच्चों को अये अभिमन्यु जैसा वीर होना चाहिए, ये चरित्र पहले घर में दादी दादा सुनाते थे। अब दादी दादा को ही निकाल दिया है और बच्चा सीधा नर्सरी के अंदर डिम्टी पिम्टी पता नहीं क्या सीख के आता है, कुछ नहीं काम का, न बाप के काम का, न माँ के काम का। हमारे पहले कहते थे जब कोई पी लेता था तो अंग्रेजी बोलता था, अब तो सारे पिए हुए हैं, सुबह से शाम तक अंग्रेजी झाड़ते रहते हैं। भाषा सीखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति का सत्यानाश करना तो ठीक नहीं है। मैं अभी यहां बैठे हुए लोगों से पूछता हूं, आप 12 भारतीय महीनों के नाम बताओ, मुश्किल से 10 लोगों को आएंगे। जनवरी फरवरी तो ऐसे तोते की तरह बोल के जाओगे, लेकिन अब कौन सा महीना चल रहा है, आषाढ़ है, इसके बाद श्रावण आएगा, ये महीने आप अपने घर में जाके पूछो तो 2 आदमी का 1 आदमी को नहीं आते हैं। बच्चों को तो नहीं आएंगे, दिन के नाम नहीं आते हैं कि कौन सा शुक्रवार है और कौन सा बुधवार है और कौन सा आतवार है, कुछ भी नहीं आता है। संस्कृति के सारे संस्कार समाप्त हो गए। ये आपको लग रहा है थी ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी आवश्यकता है, ये शिक्षा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये इतना सारा पंडाल और ये 7 दिन कथा, ये पहले ऋषियों ने इसी तरीके से धर्म को बचा के रखा था। 1200 साल के मुगल तुर्कों का, मुगलों का शासन था, ये साधु संत पेड़ के नीचे बैठ के ये बताते थे कि भाई तो होना चाहिए भरत जैसा, राज की लालच के लिए भाइयों के प्रेम को कभी कुर्बान नहीं करता है, बलिदान नहीं देता है। अरे अरे पत्नी तो होती न होनी चाहिए सीता जैसी, कभी राजमहल में रहना पड़े तो भी पति के संग कभी वनवास जाना पड़े तो भी छाया बन के साथ रहे, दुख सुख में साथ रहने वाली, तभी ये धर्म बचा हुआ था। ऐसे महात्माओं ने ये नहीं किया होता तो सब कुछ समाप्त किया होता। तो ये सत्संग असल में बिगड़े हुए माशरे को सुधारने का बहुत बड़ा अभियान है। आपके घर में टीवी आपने फ्रिज लेके रखा है क्यों? सब्जी हमारी 7 दिन खराब नहीं हो, खराब अंदर रखोगे दूध फटा हुआ तो क्या अच्छा हो जाएगा? क्या फ्रिज में खराब सब्जी रखने से अच्छी हो जाती है? कुछ मशीनें हमने इसलिए ली हैं कि कोई चीज खराब होने से बच जाए, और उसका अच्छी चीज को अंदर रखा है खराब होने से बच जाए, लेकिन खराब चीज को अच्छा नहीं कर सकती है वो। कोई ऐसा मशीन दुनिया में बना है जिसमें बच्चा खराब होने से बच जाए, आदमी बदमाश होने से बच जाए? ऐसा कोई मशीन है क्या? अच्छा है अच्छा ही रहे और बुरा है वो भी अच्छा बन जाए, ऐसा कोई मशीन है क्या? ये सत्संग वो समारोह है जिसमें अच्छे अच्छे रहते हैं, जो अच्छे नहीं है वो अच्छे बन जाते हैं। इसलिए संतों ने इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया। ये बहुत बड़ा अभियान है, ये लोगों के संस्कारों को सुधारने का बहुत बड़ा अभियान है। इसलिए कहा कि ये इसलिए नहीं वेद पढ़ना है कि मेरे को आता है, इसलिए पढ़ना है कि इसके पीछे उद्देश्य है। इस अध्याय का नाम लिखा है कि परम की प्राप्ति। परम की प्राप्ति तब होगी जब ब्रह्म भूत, इसलिए इस अध्याय का दूसरा नाम है अक्षर ब्रह्म योग। मतलब जब तक हम ब्रह्म भूत के स्तर को प्राप्त नहीं करेंगे, भौतिक बंधनों से मुक्त हो नहीं होंगे, और वो होना कैसे होता है? भौतिक बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या है? अभिविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और ब्रह्म के स्तर पे जाने के लिए अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है, जीते जी करना है, तो इस भक्ति के साधन को पले बांध लो। निरंतर कहीं भी हो पहले भगवान को याद करो, फिर दुनिया के काम की बात करो। हमने दुनिया के काम को पहले रख दिया, भगवान को पीछे रख दिया। और इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम यह निकला है, परिणाम यह निकला है कि शरीर को महत्व दे दिया, आत्मा को भुला दिया सबने। और शरीर को महत्व दे दिया, आत्मा को भुला दिया, इसलिए घरों की कीमत ज्यादा होगी, आदमी की कीमत कम है। आदमी को तनख्वाह नहीं मिलती है जितने का घर बिकता है। घर की कीमत आदमी से ज्यादा हो गई कि नहीं? जमीन की कीमत ज्यादा होगी, किसान बेचारे को कोई पूछता नहीं है। तो क्या बगैर किसान के जमीन किसी काम की है क्या? बगैर आदमी के कोई घर भूत बंगला हो गया कि नहीं हो गया? केवल एक गलती की है, भगवान को पीछे रख दिया, दुनिया को आगे रख दिया। शरीर को आत्मा को पीछे रख दिया, शरीर को आगे रख दिया। अब कितनी समस्याएं हो गई हैं उसको आप झेल रहे हो, देख लो। आजीवन कमाई से घर नहीं खरीदा जा सकता, ऐसा आम आदमी 80% आदमी ऐसे हैं जो नहीं घर खरीद सकते। हमने वैल्यू इतनी गलत कर दी है, हमने महत्व नाशवंत चीजों को महत्व दे दिया और मुख्य चीजों को हमने भुला दिया। जीवन को भगवान में पहले रखो, भगवान आपको हमेशा याद रखेगा। आप भगवान को पहले याद करो, भगवान आपको पहले याद करेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। जो जैसे व्यवहार से मेरे पास आएगा वैसे ही मैं व्यवहार करूंगा। आप मेरे पास प्रेम से आओ सेवा करने, मैं आपकी प्रेम से रक्षा करूंगा। और आप कहो कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है तो जाओ अपने आप जाके भुख, तो मैं भी बांसुरी बजा रहा हूँ बैठ के, काम मेरे को भी नहीं है, बहुत गैया है चरा के आ जाऊंगा, मैया की गोद में बैठ के मक्खन मिश्री खा लूंगा, तुम जाओ पिज्जा खाओ और पास्ता खाओ और नरक का रास्ता लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा रामा।